ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय है पहला और श्लोक संख्या 31 है। अजामिल के जीवन का इतिहास शीर्षक हित हमें यहाँ आत्मा का परिचय, आत्मा की स्थिति इत्यादि समझने को मिलेगी। विकर्षतो अंतरदया दासी पतिं अजामिलम् यम प्रेष्या विष्णुर्दूता वारयामासुरोजसा। विकर्षतः छिनते हुए, अंत हृदयात हृदय के भीतर से, दासी पतिम वेश्या के पति, अजामिलम अजामिल को, यम प्रेष्यान यमराज के दूतों, विष्णु दूताः विष्णु के दूतों ने, वारयाम आशु मना लिया, ओजसा गुंजते वाणी में। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यमराज के दूत वैश्यपति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गुंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। एक वैष्णव अर्थात उस व्यक्ति की जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, विष्णु दूतों के द्वारा सदैव रक्षा की जाती है, क्योंकि अजामिल ने नारायण के नाम का उच्चारण किया था। अतएव विष्णुदूत न केवल उस स्थान पर तुरंत आ गए, अपितु उन्होंने यमदूतों को तुरंत आदेश दे दिया कि उनके छुए भी नहीं। गरजती वाणी में बोलते हुए विष्णुदूतों ने यमदूतों को यह धमकी दी कि यदि वे अजामिल की आत्मा को उसके हृदय से खींचना जारी रखा तो वे दंडित होंगे। यमराज के दूतों का कार्यक्षेत्र सभी पापी जीवों का तक ही व्याप्त है, किंतु विष्णु दूत किसी को भी दंड देने में सक्षम है, जिसमें यमराज भी सम्मिलित है, यदि वह किसी वैष्णव के साथ बुरा करे। भौतिकवादी विज्ञानी यह नहीं जानते कि वे अपने भौतिक यंत्रों द्वारा शरीर के भीतर आत्मा की खोज कहाँ करें, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा हृदय के भीतर होता है। यमदूत अजामिल की आत्मा हृदय के भीतर से निकाल रहे थे। इसी तरह हम यह जान पाते हैं कि परमात्मा विष्णु भी हृदय के भीतर में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही शरीर रूपी एक ही वृक्ष में दो मित्र पक्षियों के रूप में रहते हैं। परमात्मा मित्रवत कहे जाते हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यदि आत्मा पर इतने दयालु हैं कि जब यह आदि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है तो भगवान उसके साथ साथ जाते हैं। यही नहीं, व्यष्टि आत्मा की इच्छा तथा कर्म के अनुसार भगवान माया के माध्यम से उसके द्वारा दूसरा शरीर उत्पन्न करते हैं। शरीर का हृदय एक यांत्रिक अवस्था है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और वे भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी कि भरमा रहे हैं। यंत्र का अर्थ है मशीन तथा स्वतोचालित मशीन। शरीर रूपी यंत्र का चालक व्यष्टि आत्मा होता है जो जिसका निर्देशक यानी स्वामी भी है, किंतु परम स्वामी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। मनुष्य का शरीर माया के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है कर्मणादेव नेत्रेण, और इस जीवन के कर्मों के अनुसार दूसरा यंत्र उत्पन्न किया जाता है और वह भी दैवी माया के निरीक्षण में। दैवी हेशा गुण मम माया दुरत्यय। उपयुक्त समय पर मनुष्य के अगले शरीर का तत्काल चुनाव किया जाता है और व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही उस शरीर रूपी यंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यह देहांतरण की विधि है। एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण के समय यमराज के दूत आत्मा को निकाल करके उसे विशेष प्रकार के नारकीय जीवन में रखते हैं, जिससे वह उस दशा में रहने का अभ्यस्त हो ले जिसमें उसे अगले जीवन अगले शरीर में रहना है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विकर्षतो अंतर हृदयात दासी पत्तिम अजामिलम यम प्रेष्या विष्णुदूता वारयाम असुरो औजसा। यमराज के दूत वैश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गुंजती वाणी में उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तो यहां एक वास्तविक घटना हो रही है जो हमें अपने जीवन के अंतकाल में सभी को अनुभव करने को मिलेगी। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, भगवान विष्णु की शक्ति परा यानी कि अपरा प्रकृति से बहुत उत्तम होती है, सर्वशक्ति होती है उसमें। तो यहां आत्मा की जो चेतना होती जिसमें शक्ति बह रही है, वो शक्ति का मूल केंद्र हृदय बताया गया है। हृदय की परिभाषा भी अलग अलग ढंग से की जाती है, लेकिन एक भौतिक हृदय जो हर एक के जीवन में दब रहा है, वे ऐसे कई ऐसे प्राणी होते हैं कि जिनमें हृदय होता ही नहीं, दबकता हृदय नहीं होता। छोटे छोटे जीवों में भी हृदय की बजाय कुछ और होता है, नलियां होती है लेकिन इतना जटिल शरीर न होने के कारण ऐसे अपने जैसा हृदय नहीं होता, लेकिन जो लहू बसाने के लिए जितना उसको दबाव चाहिए वो शरीर में पर्याप्त होता है, क्योंकि लहू सारे शरीर में हर एक कोशिकाओं की तरह फैलाना है। तो इतना शक्तिशाली अंग जो जन्म से मृत्यु तक धबकता रहता है, तो उसकी रचना भी तो विशिष्ट होती है। ये विशिष्ट रचना भौतिक आदि विज्ञानी और डॉक्टरों के लिए भी कभी कभी परेशानियां खड़ी कर देती है। चेतना का उद्गम हृदय बताया जाता है, लेकिन ये हृदय की रचना के पूर्व जब शरीर का विकास होता है एक अंड से लेकर, यानी कि फलित अंड से लेकर अनेक अनेक कोशिकाओं में विभाजित होकर अपने अपने मूल स्थान में टिकते रहते हैं, तीन प्रकार की कोशिका बताई है। बाहर त्वचा या शरीर को ढकने के लिए कोशिका होती है, जो अंदर भी जा सकती है, जैसे कि ये बाहर की त्वचा पैदा हुई है तो अंदर पेट की त्वचा जहाँ हवा का आना जाना होगा, पानी का आना जाना होगा, तो वो आंतरिक त्वचा भी वही कोशिकाओं से होती है। लेकिन स्नायु हड्डियां उसके लिए अलग कोशिका बताई है, और गर्भ जैसे विकसित होता है तो वो अपना निर्धारित रूप से शरीर का विकास करने में काम करती है। आंतरिक कोशिकाएं जो होती हैं तो आंतरिक अंग जैसे का हृदय इत्यादि बनाती है। तो तीन भाग बताए गए हैं, ये साइंस में पढ़ने में आता है। जब हृदय के विकास के लिए आंतरिक कोशिकाएं काम करती हैं और उसमें ज्ञान तंतु का भी आंतरिक कोशिकाओं से विकास होता है, जो सिर्फ मस्तिष्क में नहीं होते हैं, तो जब छोटा जीव होता है तो वहां दो प्रकार के ज्ञान तंतु की कोशिकाएं होती हैं जो हृदय में विराजमान बताई। जैसे कि ये कठोपनिषद में बताया कि द्वापर्णो सुयज, दो पक्षी एक ही पेड़ की एक ही डाल पर बैठे हैं, रूप रंग में समान है, रूप रंग में समान है। एक पक्षी के चोंच में फल है और दूसरा उसे शांत चित्त से दिखता रहता है। जिसके मुख में फल है वो पक्षी को अपने मित्र पक्षी से देखने के लिए कोई फुर्सत नहीं और वो विह्वल रहता है, तो अपनी विह्वलता में दूसरों पर कैसे ध्यान दे सकता है। तो ये दो कोशिका जो हृदय में विराजमान होती है, जो ज्ञान तंतु, उसे अंग्रेजी में तो वेगस नर्व कहते हैं, वेगस नोड्स एंड वेगस नर्व्स। तो ये दो ही क्यों है और कहां बैठी है पता है? वो हृदय के चार खाना तो पता है आपको, तो बाईं ओर का जो दो खाना है और जो दाईं ओर के दो खाने के, वो बीच में बैठती है। यानी कि हृदय के धबकार के अनुसार उसके हृदय में जो दबाव डालकर लहू सब जगह पहुंचाना, तो ये सबका नियंत्रण करते हैं। जब लहू बंद हो जाता है तो कोई संचार नहीं बताया जाता। तो ये कोई रूपक है। दूसरी ओर देखें तो हृदय मर्मस्थल को भी कहा जाता है, मर्मस्थल यानी सबसे ज्यादा अंदरूनी समझ जहां से आती है, चेतना का जहां से उद्गम होता है, वहां आत्मा का स्थान, उसको हृदय स्थान बोलते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी बहुत सीधी सादी भाषा में हृदय की परिभाषा देते हैं। को देखो हृदय हृदय च यह भद्राणी विधुनोति सुरित्सता, सब काम हृदय से चालू होता है। अपनी चेतना की सफाई, चेतो दर्पण मार्जनम जो है, तो वो चेतना का उद्गम से चालू होता है, बाहरी सफाई से कुछ नहीं होता। अंदर से सफाई चालू होनी चाहिए, बाहर की सफाई भगवान का नाम नहीं करेगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बाहर की सफाई भगवान का नाम करती है। लेकिन अंदर से सफाई चालू हो जाती है उसका तो हर एक भक्त को अनुभव होगा। तो ये बहुत मर्मस्थल है, मर्म यानी इतना गहरा नाजुक स्थान होता है, मर्मस्थल इसे कहते हैं। तो वो हृदय बताया गया है ना। अभी अभी प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो हृदय में आंख भी है, आंख भी है, देखना भी होता है। तो वास्तविकता यूं देखे तो हृदयेषु विलोकयन्ति यानी के हृदय में तो वैसे डॉक्टरों को तो आंख दिखाई ही नहीं देती। बहुत सारी चीज अंदर से नहीं, थोड़ी चीज कर पाते हैं। एक सामान्य प्लम्बर होता है ना, प्लम्बर को क्या कहें हिंदी में, जो पानी की नाली टूटी या टॉयलेट इत्यादि टूटा जोड़ता है, वो प्लम्बर कहता है। तो आजकल ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी जो है खोले, तो उसमें भी डॉक्टर प्लम्बर जैसा काम करते हैं। एक नली अच्छी निकाली और जो बुरी नलियां हैं जो बंद हो गई हैं उसको ज्वाइन करते हैं, प्लम्बर का काम है। लेकिन हृदयेषु विलोकयन्ति तक तो नहीं पहुंच पाते। और हृदय की आंखें भी देखने के लिए भगवान के नाम द्वारा सफाई करने की बात बताई। और भगवान का नाम भी सुनने, भगवान के गुणगान भी सुनने के लिए हृदय तक पहुंचाने की बात की है, तो वो कौन सा मर्मस्थल है? ऐसे नहीं कि कृष्ण प्रभुपाद जी ये भौतिक हृदय की बात करें वो गलत है, नहीं, हृदय में भी तो हृदय होता है, चाहे चेतना का उद्गम हो वो मर्मस्थल को हृदय के। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने ब्रह्म संहिता में कमेंट्री में दिया है। हृदय की परिभाषा सिर्फ भौतिक हृदय तक मर्यादित नहीं है, आंतरिक हृदय जहां आंख भी बताई वहां भी पहुंचाती है, और उसे भी ज्यादा गहरी जहां चेतना का उद्गम बताया है वहां ही तो जीव रहेगा। तो जीव ये सब अनुभव करता है, अनुभव करने के लिए हमें इंद्रियां दी है, तो जैसे बाहर की इंद्रियां हैं वैसे आंतरिक इंद्रियां भी तो है। जिसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, देखो एक कान, देखो कान के भी तीन भाग बताए हैं, ये श्रवणेंद्रिया का साधन है, आवाज की तरंगे इकट्ठी करके अंदर वो मिडल ईयर को पहुंचाता है, जहां एक ड्रम होता है और उसके साथ कुछ ज्ञान तंतु जुड़े हुए हैं। लेकिन ज्ञान तंतु एक शंखाकार गुलाय वाली कोकलिया कहते हैं उस पे ले जाते हैं और ज्ञान तंतु को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो ज्ञानेंद्रिया कहां है? ज्ञान की इंद्रियां कहां? ये तो बाहर की इंद्रियां बताई है। ज्ञानेंद्रियां भी चेतना में, चेतना ये पांचे पांच इंद्रियों के विषय के लिए सर्वसामान्य काम करती है, रूप रंग गंध दृष्टि त्वचा यानी कि संवेदना, ये सारी पांचे पांच इंद्रियों का काम करती है। वो कहां से आती है? खास करके श्रवण इंद्रिय पर हम यदि ध्यान दे तो कपिल देव देवहूति को बताते, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविधा भवंती हृदय कर्ण रसायन कथा, हृदय और कान के बीच में कथा में जो रस है उसका आना जाना जब होता है, कहां से? कान से और हृदय में, यानी कि चेतना तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए यदि हृदय को मुख्य अंग कहते हैं तो ये मुख्य अंग जितना बाहर के शरीर को टिकाने के लिए आवश्यक है तो वो हृदय की महत्ता सिर्फ बाहर की दृष्टि से ही जानना महत्व का नहीं है, आंतरिक प्रक्रिया जो जीव की है उस तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता है। यूं देखें तो नृसिंह भगवान ने इतना क्रोध बताया है हिरण्यकशिपु कि हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठाकर उसका पेट फाड़ के मारना ही काफी नहीं रहा, वो मर गया है, फिर भी नृसिंह भगवान ने उसके पेट में हाथ डालकर उसके हृदय को खींचा, तोड़ा और फर्श पे पटकाया। ऐसा क्रोध किसी ने नहीं बताया। ये हृदय को क्यों पटकाया? अंतराल की तो माला पहन ली, क्यों? इसमें जो चेतना है, ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति से चेतना इतनी दूषित होती है, तो भगवान जब कहते हैं कि ऐसे असुरों को तो मैं बारंबार क्षिपामी असज्र आसुरम योनि मापन्नम मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, इनका उद्धार की तो बात ही है, मैं तो और ज्यादा ज्यादा अंधकार वाली दशा में उसे डालता हूं। तो चेतना और अज्ञानता, चेतना का विषय है पांच पांच ज्ञानेंद्रियों की पहचान करना और उसके द्वारा आत्मा अपनी औकात समझता है। ये यदि पांच पांच ज्ञानेंद्रियां जीव में नहीं है, यानी कि जीव कहाँ है तो मर्मस्थल, मर्मस्थल कहाँ है तो शरीर के बहुत आवश्यक भाग, जिसकी आवश्यकता शरीर को टिकाने में है, वो हृदय को द्वारा पहचान जाती है। सामान्य भाषा में देखे तो हृदय में भगवान विराज है, क्योंकि परमात्मा का जिसने परिचय किया है एक दास्य भाव से, तो हनुमान जी भी छाती फाड़ के हृदय में बैठे हुए सीताराम को बताते। तो ये एक बहुत मार्मिक यानी कि अंतर सूझ वाली अनुभूति है। अंतर सूझ वाली अनुभूति है, तो वहां बैठे जीव को खींच कर निकालने का प्रयत्न ये यमदूत कर रहे हैं। उनको देर तो लगती है, लेकिन ये जीव जब निकलता है तो हॉस्पिटल में ये बताया जाता है, क्योंकि आदमी काफी परेशान होता है, काफी परेशान होता है जब जीव निकलता है, तो कोई नर्स या डॉक्टर को पूछेंगे कि ये दशा क्या, तो कहते हैं उसे टर्मिनल रेस्टलेसनेस कहते हैं। जब अंत आता है तो जीव रेस्टलेस बन जाता है। अरे रेस्टलेस नहीं, टर्मिनल यमदूतनेस है। जब यमदूत दिखाई देते हैं जीव को, सब प्रकार की पहचान होती है, लेकिन कर्मों के अनुसार उसे दृष्टि उस समय में प्राप्त होती, वो जग जाता है, लेकिन जगे हुए अंधकार में जगे तो फायदा क्या, उजाला में जगना चाहिए ना। तो उसे ये सारा परिचय करवाने के लिए के अजामिल तूने तो ऐसा गर्हित काम किया है, इसलिए यमदूत आए हैं और तुझे खींच के ले जाना चाहते हैं, लेकिन तूने सिर्फ नारायण का नाम दिया है, तेरे बेटे को पुकार करने के बहाने से ये तो विष्णु दूत आ गए। तब यमदूत भी चक्रा में चढ़ जाते हैं। आप देखो यमदूत यमराज के सेवक हैं, यमराज विशुद्ध भक्त हैं, महाजन हैं, और यदि यमराज भी गलती करते हैं, कोई विष्णु भक्त को गलती से भी कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं तो वो डरते हैं, करते हैं तो करने पहले से डरते हैं, लेकिन करना नहीं चाहेंगे। तो भगवान का नाम जो ले रहा है, और अंत समय अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सम्मत भावम याति जाति नात्र संशय। संशय की बात को हम गहराई से देखें और संशय दूर करने का प्रयत्न करते हैं, पर लेकिन भगवान तो सीधा ही कह देते हैं। हमें संशय नहीं रहेगा, इसलिए आपको अटपटी भाषा में हमने समझाया कि संशय नहीं रहना चाहिए। हृदयेषे, हृदय शरीर का मर्मस्थल कहलाता है, तो उसी तरह चेतना का मर्मस्थल भी जीव है। तो जीव जहां से जहां होता है वहां से चेतना का उद्गम है। आप उसे लहू द्वारा प्रसारित होता है, ऑक्सीजन कहो तो ऑक्सीजन रक्त के लाल कण ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, लेकिन चेतना, चेतना का उसी तरह विस्तार होता है, लेकिन चेतना का उद्गम तो एक जगह पे ही रहता है। यदि जीव को हृदय में वास है ऐसे कहते तो वहां क्यों नहीं ढूंढते, नहीं ढूंढ पाते ही नहीं। डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग इतना साफ बताया है कि जीव और परमात्मा दोनों एक ही हृदय में विराजमान है, तो वहां क्यों नहीं ढूंढ पाते कि हृदय में ही। आप देखोगे तो हमने ये हृदय में दो ज्ञान तंतु की गांठ है जिसे वेगस नोड्स कहते हैं। तो यदि वहां समझो कि ये आत्मा और परमात्मा बैठा है, लेकिन एक गांठ उसका लूप होता है जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, पर लेकिन वेगस नर्व ज्यादातर आंतरिक इंद्रियों को ही संभालती है, शरीर के स्नायु इत्यादियों को नहीं संभालती। तो दो प्रकार की संवेदना वाली ज्ञानेन्द्रिय यानी बाहर शरीर के जो ज्ञान प्राप्ति के लिए है, तो एक को वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथी मीन करुणा, एक स्वयं संचालित ज्ञान की सारी रचना है, ज्ञान की जानकारी। हम शरीर से यत्किंचित जानकारी जान लेते हैं, ठंडा है, गर्म है, वो सभी विरुद्धाभासी जो बाहरी वातावरण है इनको पहचानने के लिए ये ज्ञान तंतु। लेकिन ये शरीर को चलाने के लिए हमारी थोड़ी इच्छाओं भी पूरी करने के लिए जो ज्ञान तंतु हैं वो इच्छावर्ती यानी कि वॉलंटरी कहलाता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, स्वयं की इच्छा के अनुसार चलने वाली ज्ञान तंतु की जालियां। लेकिन दूसरे को सिंपैथेटिक क्यों कहती हैं? सिंपैथी यानी करुणा, किसी पर करुणा बताना, और वो दूसरे नोड से चालू होती है। और खास करके ये शरीर को टिकाने के लिए जीव में जहां रह रहा है तो रिपेयर करने की भी भावना होती है। किसी का हाथ चोट लग गई, बहुत खून बह रहा है, तो वो ये साइंस में पढ़ने को आता है। ये जो वॉलंटियर, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये लहू का बचाव यानी कि संग्रह बड़े बड़े अंदर जो बैठे हैं, लीवर है, यकृत कहते हैं लीवर को, यकृत, किडनी है, इसमें संग्रह करता है कि लहू निकले ही नहीं, कि लहू की आवश्यकता है। ये सिंपथी कौन बता रहा है? ऐसा क्यों भगवान ने रचा? फिर भी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ये रचना को अवगणना करके सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता, अहंकारी बनता है, सब प्रकार के भगवान के निर्देशों का उल्लंघन करता है, सब प्रकार के, वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। तो ऐसे व्यक्ति को उसी मात्रा में दंड देने की आवश्यकता बनी रहती है। तो भगवान ने यमराज के अंडर में काम करने वाले यमदूतों को दिए, और यमदूत विकराल स्वरूप वाले बताए हैं, सुंदर स्वरूप वाले बताए नहीं, विकराल स्वरूप वाले बताए। विकराल क्यों? भयानक क्यों? इनको देखकर ही पेशाब कर लेते हैं, टट्टी निकल जाती है, ऐसा विकराल स्वरूप। तो मरते समय जब यमदूत आते हैं तब ये हालत होती है, जो देहात्म भानी होती है तो वो उनकी ये सजा होती है, वो ज्यादातर पिछले मार्गों से इसका जीव निकलता है, खेचते हैं हृदय में से है, भाग जाता है पीछे से, वह पकड़ लेते हैं वहां से, छोड़ेंगे थोड़े। हाँ, जो ऊपरी मार्गों से जीव निकलता है, मुख से, आंखों से, सही कानों से, वो अवश्य आगे प्रगति के लिए जाए। और यदि वैष्णव है जिसके मुख में भगवान का नाम रहा है, तो विष्णु दूतों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी भक्ति की प्रगति में आगे जाया सकता। ये सारी रचना भगवान ने अनंत काल के जीवन के लिए मार्गदर्शिका बनाने के लिए, आदर्शता के नियमों सिर्फ मनुष्य को लागू, देवता, मनुष्य देवता और दानवों को भी लागू पड़ता है। यूं देखे तो ये यमदूत कहां से? राक्षस गण से आते हैं, लेकिन एक विशुद्ध भक्त की सेवा के लिए आते हैं। वो जानते हैं कि इनका बॉस यमराज अंतिम निर्णायक व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो भगवान का अनुदास है। तब इन लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए जो विष्णु दूत होते हैं वो कितने कॉन्फिडेंस से गंभीर वाणी में, यानी कि यहां बताया है कि गूंजती हुई वाणी में, गूंजती हुई वाणी हमेशा सुनाई देती है। कान करके सोल कान खोल के सुन लो, यूं कहते ना हम, कान खोल के सुन लो, हाँ खबरदार ये यहां तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो भगवान का नाम और उसके द्वारा जो सारा आध्यात्मिक वातावरण और अपनी असल जो चेतना जो है विशुद्ध चेतना में विशुद्ध जानकारियां प्राप्त करने में कितना लाभ होता है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भगवान का नाम नहीं ले सकता। भागवत में बताया है पुमान बिरज्जेन बिना पशुघ्न, पुमान बिरज्जेत बिना पशुघ्न, पशुघ्नो यानी कि आत्मा तो अमर है लेकिन आत्मा की हत्या करने का प्रयत्न करने वाला भी तो पशुघ्न कहलाता है। शरीर को मार सकता है ना, आत्मा को मार नहीं सकता, पर फिर भी आत्मा को परेशान करने वाला तो यानी कि मांस खानार पशुघ्न कहलाता है, सहभागी पशु की हत्या के लिए। कह उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान बिरज्जेत बिना पशुघ्न, भगवान के गुणगान वो पशुघ्न गा ही नहीं सकते। जो आत्मा के प्रति बेदरकार रहता है उनको सताता है, भगवान कहते हैं ऐसे जो अनधिकृत तप इत्यादि करके भी शरीर को कष्ट पहुंचा जैसे हिरण्यकशिपु, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे सताने का प्रयत्न करते हैं, वो भी पशुघ्न कहलाता है। तो ये पशुघ्न यानी कि जीव की हत्या, जीव को मारना, उनके शरीर में से उसको जबरदस्ती से हटाना, जबरदस्ती से जो काम यमदूत नहीं करते जबरदस्ती से, वो तो कर्मों के अनुसार करते हैं। पर जो मनुष्य ईर्षालु होकर जीव की महत्ता नहीं जानता, चेतना की महत्ता नहीं जानता, तो वो असुर योनि कहलाती है, वो ईर्षालु योनि होती है। जीव के प्रति ईर्षालु है इसलिए तो खाता है, यानी कि जागृत चेतना की बात है, जो अपना अपने रक्षा के लिए प्रयत्न करती है, अपने जानता है कि ये मुझे मार रहा है तो भाग जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जानबूझकर किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना वो पशुघ्न की श्रेणी में आता है। आततायीन शब्द भी उसके लिए उपयोग हुआ है। तो जानबूझकर किसी को मारने का प्रयत्न करता है वो आततायीन कहलाता है। तो इसी तरह जब हम ये आत्मा की संज्ञा यानी कि उसकी जो मर्म स्थल और गहराई की जब बात करते हैं तो वहां से उसको हटाना, जबरदस्ती से खींचना यमदूतों का कर्तव्य होता है। उसको खींचकर यानी कि आत्मा का जब सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से घिरा हुआ उनके साथ खींचकर ले जाना और उसके कर्मों का परिणाम देना इनकी जिम्मेदारी है। और यहां बताया प्रभुपाद जी ने कि ऐसी शिक्षा देते हैं कि उसे याद दिलाते कि अभी तुझे दूसरे शरीर में ऐसे ही सारे कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा, जैसे तूने किया है वैसा ही तुझे दूसरा शरीर प्राप्त होगा, उसमें उसी प्रकार का कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा। तो ये तो सीधा साधा विश्लेषण है। तो हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये हृदय जो है, जो शरीर का मर्मस्थल है, तो चेतना का मर्मस्थल का भी तो हृदय है। उस श्लोक में प्रभुपाद जी बताएं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और ये भागवत धर्म में बताया है कि जब आत्मा की शुद्धि हो, प्रसन्नता, प्रसन्नता में भगवान का नाम आगे लेते हैं तो क्या होता है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भगवान का तत्व विज्ञान, परम सत्य का ज्ञान की अनुभूति जब होती है तो ये शरीर से मुक्ति हो जाती है, पर उसके बाद असली भक्ति जो चालू होती है तो वो भक्ति के द्वारा उसके सारे संशय मिटते हैं। हृदय में जो ग्रंथियां हैं, हृदयंतश्च य भद्राणि विदुनोति सुरित सताम, वो ग्रंथियों को भी तोड़ते हैं भगवान का नाम, यानी कि अज्ञानता की ग्रंथियां, अपने अपकर्मों की ग्रंथियां, अपने विषय वासनाओं की ग्रंथियां। विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ए व्यक्ति कर्म का बंधन नहीं है, भक्ति के कर्म कभी बंधन करते नहीं। जो भक्ति करते करते ऐसे कर्म करते हैं और अवश्य बंधन प्राप्त होता है, तो समझना इसमें भक्ति का गुनाह नहीं है, आदमी के मनोविकार का गुनाह। तो जैसी चेतना है तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। उसको साक्षात अपने आप और हृदय में बैठे हुए परमात्मा का भी दर्शन होता, दृष्ट। ऐसी विशुद्ध स्थिति में आत्मा परमात्मा के दोनों के स्थान की बात। अभी देखोगे आत्मा छोटा है, लेकिन परमात्मा की भाषा में तो अणुरणिया महतोमनीय, यानी कि आत्मा से भी छोटा बनकर आत्मा के हृदय में बैठ सकता है। अभी आत्मा का हृदय कहां ढूंढने जाओगे? कौन संचालन कर रहा है जीव का? वो साइड में बैठ के, अंदर बैठ के फायदा? तो एक तत्व तो दिखाई देता है, तात्विकता में कोई दृष्टि भेद नहीं के, लेकिन जो दे रहा है आत्मा को सप्लाई कर रहा है कि अभी तेरी इच्छा पूर्ण कर, मैं देते जाता हूं, लेकिन आत्मा को फुर्सत नहीं उसकी प्रत्यय देखने के लिए। तो एवात्मा और ईश्वर दोनों का परिचय उसको होता है, परिचय यानी साक्षात्कार। तो भगवान का नाम कितना पावरफुल है, कहां से हमें अपने आप को ढूंढना जीवन का एक ही मात्र कर्तव्य है। तो भगवान का नाम लेकर अवश्य बिना संदेह हम अपने आप को ढूंढ पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? व्यष्टि, एक व्यष्टि और व्यक्ति में क्या भेद है? सब जगह फैलाया हुआ व्यष्टि, लेकिन उसका स्थल भी तो है, स्थिति से परिस्थिति आती है। तो व्यक्ति अब व्यष्टि अपना विस्तार करके, तो ये शब्दों की जाल है।